अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थीं, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वो बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वो घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवाले पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वो हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखीं। उसे अफसोस था वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था, पर यह तय था कि वो उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ों पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वो रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़का कर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वो सलोनी उसे दिखेगी वो उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वो पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं हम तो के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वो कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वो क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा? वो बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वो अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सपने ले रहा है, वहां लाखन लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाच के बीच सपने 9, 2, 11 हो गए।